एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी के सभी सुनने वालों का एक बार फिर स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में सुना तो सबने होगा पर शायद पूरी तरह समझा नहीं। वाइकिंग्स।
हाँ, वाइकिंग्स।
और ये चर्चा हम करेंगे जूलियन रिचर्ड्स की किताबों के जरिए, जिन्होंने वाइकिंग इतिहास को एक कह सकते हैं बिल्कुल नई रोशनी में देखा है।
वाइकिंग्स मतलब नाम सुनते ही दिमाग में वो एक छवि आती है ना, खूंखार समुद्री डाकू।
हाँ, और वो सींग वाले हेलमेट।
बिल्कुल, सींग वाले हेलमेट पहने हुए, लूटपाट करते हुए। लेकिन आज की बातचीत शायद इस इमेज को थोड़ा हिला देगी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाइकिंग होना असल में क्या था, उनकी अलग अलग भूमिकाएं, उनके लक्ष्य क्या थे।
बिल्कुल, क्योंकि रिचर्ड्स हमें यही बताते हैं कि ये तस्वीर अधूरी है, शायद काफी हद तक गलत भी। वाइकिंग्स इससे कहीं ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स और प्रभावशाली लोग थे।
अच्छा।
हाँ, वे कुशल कारीगर थे, व्यापारी थे जो दूर दराज तक जाते थे, नई दुनिया खोजने वाले एक्सप्लोरर थे, और यहाँ तक कि अपने समय के हिसाब से देखे तो काफी उन्नत सामाजिक और कानूनी व्यवस्था बनाने वाले भी थे।
तो आज हम पुरातात्विक सबूतों के आधार पर उनकी असली कहानी जानने की कोशिश करेंगे, है ना?
जी हाँ, बिल्कुल।
तो चलिए शुरू करते हैं लेखक से ही। ये जूलियन रिचर्ड्स हैं कौन, और वाइकिंग्स पर उनकी बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है?
देखिए, जूलियन रिचर्ड्स ब्रिटेन के एक बहुत जाने माने पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार भी हैं। वो यॉर्क यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर हैं और वाइकिंग युग के तो मतलब स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। लेकिन उनकी खासियत सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है।
अच्छा, मतलब वो फील्ड वर्क भी करते हैं, सिर्फ लाइब्रेरी या म्यूजियम वाले नहीं हैं।
बिल्कुल नहीं, और यही बात उन्हें खास बनाती है। उन्होंने खुद ब्रिटेन और स्कैंडिनेविया में वाइकिंग काल की कई अहम जगहों पर खुदाई करवाई है, उसे लीड किया है।
जैसे कोई उदाहरण?
हाँ, जैसे इंग्लैंड में एक जगह है टॉक्से, वहाँ वाइकिंग्स की जो मशहूर ग्रेट आर्मी थी ना, उसने अपना विंटर कैंप लगाया था। उस जगह की खुदाई रिचर्ड्स ने लीड की। तो इस तरह के जमीनी काम से उन्हें वाइकिंग्स की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी रणनीति, उनका समाज, इन सबको बहुत करीब से समझने का मौका मिला है।
अरे वाह, तो ये सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं हुआ, ये तो इतिहास को मिट्टी से खोद निकालना हुआ। इससे तो नजरिया यकीनन बहुत अलग हो जाता होगा।
एकदम, उनका नजरिया इसीलिए यूनिक है क्योंकि वो वाइकिंग्स को समझने के लिए सिर्फ लिखित दस्तावेजों पर ही निर्भर नहीं रहते।
क्यों, लिखित दस्तावेजों में क्या दिक्कत है?
दिक्कत ये है कि ज्यादातर लिखित चीजें उनके दुश्मनों ने लिखी, जैसे ईसाई भिक्षुओं ने, तो जाहिर है उनमें पक्षपात होने का डर रहता है ना।
हाँ, ये बात तो है।
इसलिए रिचर्ड ज्यादा भरोसा करते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों पर, मतलब खुदाई में मिली चीजें, बर्तन, हथियार, गहने, घरों के खंडर, कब्रें, और यहाँ तक के कंकालों का साइंटिफिक एनालिसिस भी।
जैसे वो आइसोटोप विश्लेषण जिसका आपने पहले जिक्र किया था।
हाँ बिल्कुल, आइसोटोप विश्लेषण ये कमाल की तकनीक है। इससे उनके दांतों या हड्डियों की जांच करके पता चल जाता है कि वो असल में कहाँ पले बढ़े थे, भले ही उनकी मौत कहीं और हुई हो।
अच्छा,
तो ये उनके सफर और बसावट की पूरी कहानी बता देता है। तो इन ठोस मतलब फिजिकल सबूतों के आधार पर रिचर्ड्स वाइकिंग्स की एक ज्यादा बैलेंस्ड, ज्यादा सच्ची तस्वीर पेश करते हैं, एक ऐसी तस्वीर जिसमें उनकी अलग अलग भूमिकाएं और उनके लक्ष्य साफ नजर आते हैं।
तो फिर रिचर्ड्स की किताबों का मूल संदेश क्या है? वाइकिंग्स की कौन सी छवि वो हमारे सामने रखते हैं? क्या है उनका मुख्य तर्क?
देखिए, मूल रूप से तो ये किताबें वाइकिंग्स की वो घिसी पिटी बर्बर लुटेरे वाली छवि को पूरी तरह से चैलेंज करती हैं। रिचर्ड्स का तर्क है कि वाइकिंग्स सिर्फ लुटेरे नहीं थे, बल्कि एक बेहद डायनामिक, साधन संपन्न और प्रभावशाली समाज थे। और उनकी सफलता का राज सिर्फ तलवारबाजी में नहीं था, बल्कि उनकी जो एडवांस्ड समुद्री तकनीक थी, व्यापार करने की जो स्किल थी, नए माहौल में ढल जाने की क्षमता और दुनिया भर में फैला उनका नेटवर्क, इन सब में था।
और उनकी भूमिकाएं बदलती रहती थी जैसा आपने शुरू में कहा था, ये बात जरा और समझाइए।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। रिचर्ड्स इस पर जोर देते हैं कि वाइकिंग होना शायद कोई परमानेंट पहचान नहीं थी, बल्कि काम या भूमिका थी। मतलब हालात के मुताबिक वही व्यक्ति कभी योद्धा बन जाता, कभी व्यापारी, कभी किसान, तो कभी खोजकर्ता।
अच्छा।
और उनके लक्ष्य भी सिर्फ लूटना नहीं थे। हाँ, लूटना भी एक लक्ष्य था, लेकिन उसके अलावा धन कमाना, नई जमीनें खोजना, व्यापार के नए रास्ते स्थापित करना और अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना, ये सब भी उनके लक्ष्य थे।
और ये सब सिर्फ स्कैंडिनेविया या ब्रिटेन तक ही सीमित नहीं था जैसा कि हम अक्सर सोचते हैं।
बिल्कुल नहीं, रिचर्ड्स दिखाते हैं कि वाइकिंग्स का असर और उनकी गतिविधियां पूर्वी यूरोप से लेकर रूस, बाइजेंटाइन साम्राज्य यानी आज का इस्तांबुल, मध्य एशिया, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और यहाँ तक कि नॉर्थ अमेरिका तक फैली हुई थी।
नॉर्थ अमेरिका तक?
हाँ, किताब बताती है कि कैसे उन्होंने अलग अलग जगहों पर खुद को ढाला, वहाँ के लोकल लोगों से संबंध बनाए और जरूरत के हिसाब से अपनी भूमिकाएं बदली। कहीं वे व्यापारी थे, कहीं शासक बन गए, कहीं किसान तो कहीं खोजकर्ता।
कमाल है। चलिए इस कॉम्प्लेक्स तस्वीर को थोड़ा और खोलते हैं, कुछ आम धारणाओं से शुरू करते हैं, जैसे वो सींग वाले हेलमेट, ये सच है या?
हाँ, वो तो आप भूल ही जाइए। रिचर्ड साफ कहते हैं कि वाइकिंग सींग वाले हेलमेट नहीं पहनते थे। ये बाद की कल्पना है, शायद 19वीं सदी के किसी ओपेरा शो से आई है।
अच्छा, तो ये कोरी कल्पना है।
बिल्कुल, और जैसा हमने पहले कहा, वाइकिंग शब्द किसी एक जाति या कौम का नाम नहीं था। ये स्कैंडिनेवियाई लोगों द्वारा की जाने वाली एक खास तरह की गतिविधि, मतलब समुद्र पार जाकर छापा मारना या व्यापार करना, के लिए इस्तेमाल होता था। ये उनकी एक भूमिका थी, एक रोल था, उनकी पूरी पहचान नहीं।
और ये लोग अचानक से कहीं से प्रकट नहीं हुए थे, मतलब इनका कोई बैकग्राउंड था?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वे स्कैंडिनेविया यानी आज के डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन के स्थापित समाजों से ही आए थे। वे मूल रूप से किसान थे, मछुआरे थे, कारीगर थे। आर्कियोलॉजी हमें दिखाती है कि वाइकिंग विस्तार शुरू होने से पहले भी वे बहुत कुशल शिल्पकार थे और समुद्री यात्राएं करते थे।
तो फिर ये विस्तार हुआ क्यों?
इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। शायद बढ़ती आबादी, खेती लायक जमीन की कमी हो गई हो, राजनीतिक अस्थिरता रही हो, कुछ महत्वाकांक्षी नेता उभरे हों, और हाँ, सबसे जरूरी, बेहतर जहाज बनाने की तकनीक उनके हाथ लग गई थी। इन सब ने मिलकर उन्हें नए लक्ष्य दिए। नई जमीनें चाहिए थी, नया धन चाहिए था, ज्यादा रुतबा चाहिए था।
और इन लक्ष्यों तक पहुंचने का उनका सबसे बड़ा साधन था वो जहाज, लॉन्गशिप।
बिल्कुल, लॉन्गशिप तो वाइकिंग युग का एक इंजीनियरिंग मार्वल था, कह सकते हैं। ये जहाज हल्के थे, लचीले थे, कम गहरे पानी में भी आसानी से चल सकते थे।
मतलब नदियों में भी?
हाँ, नदियों में भी काफी अंदर तक जा सकते थे, और इनमें पाल और चप्पू दोनों का इस्तेमाल हो सकता था। इसी वजह से वे खुले समंदर पार करके दूर दराज के देशों तक पहुंच सकते थे। नॉर्वे में ओसेबर्ग और गोकस्टैड जैसे जो जहाज मिले हैं ना खुदाई में, वो उनकी इस महारत का सबूत है। और ये जहाज सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं थे, ये व्यापार, खोज और लोगों को नई जगहों पर बसाने के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। मतलब ये उनके अलग अलग लक्ष्यों को पूरा करने के साधन थे।
अच्छा, लड़ाई की बात करें तो उनकी वो अचानक हमला करने की रणनीति और शील्ड वॉल, वो दीवार जैसी बना लेते थे ढालों की, ये काफी मशहूर है। लेकिन क्या इसे सिर्फ बड़बड़ता के तौर पर देखना सही है?
रिचर्ड्स कहते हैं नहीं, इसे कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। जैसे 9वीं सदी में इंग्लैंड पर हमला करने वाली वाइकिंग ग्रेट आर्मी की बात करें तो वो सिर्फ लड़ाकों का झुंड नहीं था।
अच्छा, उसमें और कौन लोग थे?
टॉक्से जैसी जगहों पर जो उनके कैंप के अवशेष मिले हैं, उनसे पता चलता है कि हजारों लोगों का एक चलता फिरता समुदाय था। उसमें कारीगर थे, व्यापारी थे, औरतें थीं, बच्चे भी शामिल थे। उनका लक्ष्य सिर्फ लूटना नहीं था, बल्कि जमीन हासिल करना और बसना भी था, जो उन्होंने बाद में किया भी। उनकी हिंसा अक्सर एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होती थी। जैसे मठों पर हमला करना आसान था क्योंकि वहां काफी धन इकट्ठा होता था, या फिर डेनगेल्ड वसूलना, मतलब हमला ना करने के बदले पैसे लेना, ये उनके आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्य साधने के तरीके थे, सिर्फ अंधी हिंसा नहीं।
तो योद्धा वाली भूमिका के साथ साथ व्यापारी वाली भूमिका भी बहुत अहम थी है ना?
हाँ, रिचर्ड्स इस पर बहुत जोर देते हैं। वाइकिंग्स जितने योद्धा थे उतने ही कुशल व्यापारी भी थे, बल्कि अक्सर तो ये दोनों भूमिकाएं साथ साथ चलती थीं। उन्होंने व्यापार के बहुत बड़े नेटवर्क बनाए।
जैसे पूर्व में?
हाँ, पूर्व में देखें तो स्वीडन के वाइकिंग्स, जिन्हें रस कहा जाता था, वो रूस की नदियों के रास्ते बाइजेंटिनियन साम्राज्य यानी कॉन्स्टेंटिनोपल और बगदाद के खलीफा तक पहुंच गए थे।
बगदाद तक?
जी हाँ, बगदाद तक। वे उत्तर से फर, एम्बर, एक तरह का रेजिन पत्थर, और गुलाम ले जाते थे, और बदले में वहां से रेशम और खासकर अरबी चांदी के सिक्के लाते थे, जिन्हें दिरहम कहते हैं। स्कैंडिनेविया में हजारों की तादाद में ये सिक्के मिले हैं। ये इस ग्लोबल ट्रेड का पक्का सबूत है। ये सिक्के दिखाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सा लेना उनका एक प्रमुख लक्ष्य था।
और पश्चिम में भी उन्होंने व्यापारिक केंद्र बनाए, इंग्लैंड और आयरलैंड में।
बिल्कुल, पश्चिम में उन्होंने यॉर्विक, जो आज का यॉर्क शहर है इंग्लैंड में, और डबलिन, आयरलैंड की राजधानी, जैसे उत्तरी यूरोप के कुछ पहले बड़े व्यापारिक शहर बसाए। इन शहरों की खुदाई से पता चलता है कि वहाँ प्रॉपर बाजार लगते थे, वर्कशॉप्स थीं जहाँ कारीगर काम करते थे, और दूर दूर से लाया गया सामान मिलता था।
तो मतलब एक पूरा शहरी जीवन था वहाँ।
हाँ, एक व्यस्त शहरी जीवन। ये तस्वीर उस सिर्फ लुटेरे वाली छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाती। शहर बसाना और व्यापार चलाना, ये उनकी एक और महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे एक तरह से आप कह सकते हैं शुरुआती ग्लोबलाइजेशन के वाहक थे।
इसका मतलब साफ है कि वे सिर्फ लूटपाट करके वापस नहीं जाते थे, वे नई जगहों पर बस भी जाते थे। तो हमलावर के साथ साथ उनकी भूमिका उपनिवेशक या सेटलर की भी थी।
निश्चित रूप से उनका एक बड़ा लक्ष्य नई जमीनों पर बस्तियां बसाना था। उन्होंने फेरो आइलैंड्स, आइसलैंड जैसी जगहों पर बस्तियां बसाई।
आइसलैंड में तो उन्होंने कुछ खास भी किया था शायद।
हाँ, आइसलैंड में तो उन्होंने अल्थिंग नाम की एक सभा शुरू की, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी संसदों में गिना जाता है। फिर एरिक द रेड के नेतृत्व में वे ग्रीनलैंड पहुंचे, और लीफ एरिक्सन के नेतृत्व में तो नॉर्थ अमेरिका तक पहुंच गए। न्यूफाउंडलैंड में लॉन्स ऑक्स मीडोज नाम की जगह पर उनके गांव के पूरे अवशेष मिले हैं। तो इन बस्तियों को बसाना और चलाना उनका एक लॉन्ग टर्म लक्ष्य था।
और जब वे नई जगहों पर बसे तो क्या वे अलग थलग रहे या लोकल लोगों के साथ घुल मिल गए? उनका बर्ताव कैसा था?
वे अक्सर स्थानीय संस्कृतियों के साथ घुलते मिलते थे। उन्होंने कानून व्यवस्थाएं विकसित की, जैसे थिंग सभाएं।
थिंग सभाएं, ये क्या थीं?
ये एक तरह की स्थानीय पंचायतें या पार्लियामेंट जैसी थीं, जहां इलाके के आज़ाद लोग मिलकर फैसले लेते थे, झगड़े सुलझाते थे, कानून बनाते थे। इन सभाओं का असर बाद में इंग्लैंड और उत्तरी यूरोप के कानूनों पर भी पड़ा।
अच्छा।
रिचर्ड्स ये भी बताते हैं कि वाइकिंग समाज में महिलाओं को उस समय के कई यूरोपीय समाजों की तुलना में ज़्यादा अधिकार मिले हुए थे। वे प्रॉपर्टी रख सकती थीं, व्यापार कर सकती थीं और तलाक भी ले सकती थीं।
तलाक भी? उस जमाने में?
हाँ, अब वो शील्ड मेडन यानी महिला योद्धाओं की कहानियाँ शायद थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर कही गई हों, लेकिन वे समाज में महिलाओं की मजबूत स्थिति की ओर इशारा जरूर करती हैं। फिर उनकी कला, खासकर लकड़ी और धातु पर की गई वो जटिल नक्काशी और उनकी कविताएं, ये सब उनकी विकसित संस्कृति का प्रमाण है।
उनके धर्म के बारे में क्या? क्या वे सिर्फ अपने नॉर्स देवताओं ओडिन, थॉर, फ्रेया वगैरह को ही मानते थे या उसमें भी बदलाव आया?
शुरुआत में तो हाँ, वे अपने नॉर्स देवी देवताओं को ही मानते थे, लेकिन उनके विश्वास भी स्टैटिक नहीं थे, वे समय के साथ बदले। जब यूरोप में ईसाई धर्म फैला, खासकर 10वीं सदी के बाद, तो वाइकिंग्स ने भी धीरे धीरे इसे अपनाना शुरू कर दिया।
तो क्या उन्होंने अपने पुराने देवताओं को पूरी तरह छोड़ दिया?
हमेशा नहीं, ये बदलाव अक्सर बड़ा दिलचस्प होता था। रिचर्ड्स बताते हैं कि कई बार लोग दोनों विश्वासों को मिला लेते थे, जैसे खुदाई में ऐसी कब्रें मिली हैं जहां मरे हुए व्यक्ति ने थॉर के हथौड़े वाला लॉकेट भी पहना है और साथ में ईसाई क्रॉस भी।
अरे वाह, ये तो बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लगता है।
हाँ, ये उनकी व्यवहारिकता दिखाता है। डेनमार्क के राजा हैरल्ड ब्लूटूथ का बनवाया हुआ जिलिंग स्टोन इसका बड़ा उदाहरण है। उस पत्थर पर उसने लिखवाया कि उसने डेन्स को ईसाई बनाया। तो धर्म बदलना भी उनके लिए सिर्फ आस्था का मामला नहीं था, बल्कि अक्सर राजनैतिक और सामाजिक लक्ष्यों से जुड़ा होता था।
तो फिर इस वाइकिंग युग का अंत कैसे हुआ? क्या वे आखिरकार लड़ाई में हार गए?
रिचर्ड्स का तर्क बड़ा दिलचस्प है इस बारे में। वो कहते हैं कि वाइकिंग युग का अंत किसी बड़ी हार की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उनके खुद के विकास की वजह से हुआ।
उनके विकास की वजह से? वो कैसे
हुआ? ये कि लगभग 11वीं सदी तक स्कैंडिनेवियाई समाज खुद ही बदल गए। वहां मजबूत सेंट्रलाइज्ड राजतंत्र स्थापित हो गए। इन राज्यों ने ईसाई धर्म अपना लिया और वे बाकी यूरोप की मुख्य धारा में शामिल हो गए।
अच्छा।
तो जब समाज और राज्य ही बदल गए, तो वो वाइकिंग वाली भूमिका या जीवन शैली की जरूरत और गुंजाइश कम होती गई। वे अपने ही बनाए राज्यों के नागरिक बन गए, लेकिन उनकी विरासत, उनके व्यापारिक रास्ते, उनकी बसाई बस्तियां, उनके कानून, उनकी कला, वो खत्म नहीं हुई। वो आज भी मौजूद है।
तो अगर हम रिचर्ड्स के विश्लेषण के जो मुख्य संदेश हैं उन्हें समेटना चाहें, तो सबसे पहली बात शायद यही होगी कि वाइकिंग्स बदलाव के उस्ताद थे। उनकी अनुकूलनशीलता, मतलब अडाप्टेबिलिटी।
हाँ, बिल्कुल।
वे नई जगहों, नई संस्कृतियों, नई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बड़ी कुशलता से ढाल लेते थे। वे सीखते थे, अपनाते थे और लोकल चीज़ों को अपनी जिंदगी में शामिल करते थे। यही उनकी सफलता का एक बड़ा राज था, है ना?
बिल्कुल सही।
और दूसरा कि वो सिर्फ लुटेरे नहीं थे बल्कि व्यापार और कनेक्टिविटी के बड़े खिलाड़ी थे। उन्होंने शुरुआती ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क बनाए, शहर बसाए और दुनिया के अलग अलग कोनों को जोड़ा। उनका लक्ष्य सिर्फ लोकल नहीं था, ग्लोबल था। ये पहलू उनकी कहानी को पूरी तरह बदल देता है। तीसरा, उनकी तकनीकी क्षमता, खासकर उनके जहाज। वो लॉन्गशिप जैसी तकनीक नहीं, उनके विस्तार, व्यापार और बसावट को संभव बनाया। ये उनकी इंजीनियरिंग और इनोवेशन की क्षमता दिखाता है, जिसने उनके लक्ष्यों को हासिल करने में सीधी मदद की।
चौथा, उनका समाज हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और व्यवस्थित था। महिलाओं की अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति और थिंग जैसी डेमोक्रेटिक संस्थाएं दिखाती हैं कि वे सिर्फ तलवार के दम पर नहीं जीते थे, बल्कि उनके पास सामाजिक और कानूनी ढांचे भी थे।
और पांचवा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है पुरातत्व का महत्व।
हाँ, ये तो है।
रिचर्ड्स हमें दिखाते हैं कि इतिहास को सिर्फ लिखित स्रोतों से नहीं समझा जा सकता, खासकर जब लिखने वाले विरोधी हों। जमीन से निकले सबूत, चीजें, हड्डियां, खंडहर हमें एक ज्यादा सच्ची, ज्यादा बारीक और अक्सर ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। ये हमें उन लोगों की कहानी बताते हैं जिनकी अपनी आवाज इतिहास में शायद दर्ज ही नहीं हुई।
रिचर्ड्स का एक विचार जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो ये कि वाइकिंग होना एक पहचान से ज्यादा एक पेशा या जीवन शैली थी। मतलब जरूरत और मौके के हिसाब से उनकी भूमिका बदल जाती थी।
हाँ, ये बात हमने शुरू में भी की थी।
हाँ,
वे एक ही समय में किसान, व्यापारी और जरूरत पड़ने पर योद्धा भी हो सकते थे। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, ये उनकी खासियत थी।
और उनके जहाज, वे सिर्फ लकड़ी और लोहे के ढांचे नहीं थे, वे तो विचारों, संस्कृतियों, सामान और लोगों को हजारों मील तक ले जाने वाले माध्यम थे। उन्होंने दुनिया को जोड़ा और एक तरह से छोटा बनाया। ये उनके वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने के असल इंजन थे।
उनकी थिंग सभाएं भी कमाल की थी। सोचिए, उस जमाने में आम लोगों का एक साथ बैठकर फैसले लेना, कानून बनाना, ये शुरुआती लोकतंत्र का एक रूप था। ये दिखाता है कि उनका समाज सिर्फ ऊपर से नीचे आदेश मानने वाला नहीं था, बल्कि उसमें सामूहिक भागीदारी की भी जगह थी। तो इन सब बातों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? क्या हम वाइकिंग्स की कहानी से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कुछ सीख सकते हैं? पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो है अडैप्टेबिलिटी, यानी अनुकूलनशीलता। आज की तेजी से बदलती दुनिया में वाइकिंग्स की तरह नई परिस्थितियों में ढलने की क्षमता शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है।
बिल्कुल सही। और एक तरफा नजरिए से बचना। वाइकिंग्स की कहानी याद दिलाती है कि किसी भी व्यक्ति, समूह या मुद्दे को सिर्फ एक लेबल लगाकर नहीं देखना चाहिए। जैसे वाइकिंग्स को सिर्फ लुटेरा कहना गलत है, वैसे ही हमें आज भी किसी के बारे में राय बनाने से पहले पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए कि उनकी असली भूमिका क्या है, उनके असली लक्ष्य क्या है।
कनेक्शन या जुड़ाव का महत्व भी साफ दिखता है। वाइकिंग्स ने दूर दूर तक नेटवर्क बनाए और उसी से वे फले फूले। आज भी चाहे पर्सनल रिश्ते हों, बिजनेस हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जुड़ाव और सहयोग की ताकत बहुत बड़ी है।
और शायद लीडरशिप का एक अलग मॉडल भी। वाइकिंग्स सिखाते हैं कि व्यक्तिगत हिम्मत और काबिलियत, जैसे कुशल नाविक या योद्धा होना, उसके साथ साथ सामूहिक भागीदारी जैसे थिंग सभाएं, ये भी जरूरी है। ये सिर्फ हुक्म चलाने वाला नेतृत्व नहीं था, बल्कि समुदाय को साथ लेकर चलने वाला नेतृत्व था।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि इतिहास कितना परतदार हो सकता है, कितना मल्टीलेयर्ड। वाइकिंग्स, जिन्हें मैं सिर्फ खूंखार योद्धा समझता था, वे असल में निर्माता थे, व्यापारी थे, खोजकर्ता थे, कानून बनाने वाले थे और बहुत कुशल रणनीतिकार भी थे। आर्कियोलॉजी ने वाकई उनकी कहानी को एक नया जीवन दिया है और उनकी अलग अलग भूमिकाओं को उजागर किया है।
और मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात ये जानना था कि वे कितने ग्लोबल थे। मतलब नॉर्थ अमेरिका से लेकर मध्य एशिया तक उनका प्रभाव था। ये दिखाता है कि दुनिया हमेशा से एक दूसरे से जुड़ी रही है और वाइकिंग्स इस जुड़ाव के कितने महत्वपूर्ण सूत्रधार थे। उनका लक्ष्य सिर्फ अपने आसपास तक सीमित नहीं था, वे सचमुच दुनिया के मंच पर खेल रहे थे। रिचर्ड्स का काम हमें यही याद दिलाता है कि अगर हमें अतीत को सच में समझना है तो हमें सिर्फ ऊपर लिखी कहानियों पर नहीं बल्कि जमीन से मिले सबूतों पर ध्यान देना होगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।